तो हमने पिछली बार कहां तक किया था, किसी को याद है? 20वें अध्याय का। क्यों 20वां अध्याय क्यों नहीं? यस, क्यों 20वां अध्याय भगवद गीता में क्यों नहीं खोल सकते? वेरी गुड, आई लाइक दिस। तो भगवद गीता में 19 अध्याय है, इसलिए है ना 18 अध्याय। ओह वेरी गुड। तो आज हम चौथे अध्याय का, हमने 24 से कर लिया था, 25वें से शुरू करेंगे।
दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपास्यते ब्रह्माग्रावपरे यज्ञम् यज्ञ नैवोपजूहति।
कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ पर ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप में के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तु यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न यज्ञ के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ जिसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित हैं उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वह इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड की ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहु ईश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय बिता देते हैं, सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। तो निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही पर ब्रह्म है जिसमें आत्मस्वरूप का विलय की आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं यज्ञ के बारे में। तो यहां यज्ञ दो श्रेणियां इन्होंने बताई यहां पर, कि एक तो होता है कि चीजों को देना, अपनी जो हमारे पास है, जो धन धनाढ्य जो हमारे पास है उसकी आहुति देना, और एक यहां बताया गया है कि जो पर ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है उसमें खुद की आहुति दे देना। जैसे कि जो कई आपने देखा कई बार कई कथावाचक भी होते हैं कहते हैं ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ जो है वास्तव में इस प्रकार के जो पंथवादी होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि किस तरह से निर्विकार या निराकार ब्रह्म में जो है खुद विलीन हो जाए। तो एक जो है वो चाहते हैं कि संसार के भोगों को किस तरह से अच्छे से प्राप्त करें इसलिए से यज्ञ करते हैं। कुछ इस संसार से बहुत तंग आ चुके हैं, उनका बेड़ा गर्क हो चुका है, तो कहते हैं हम संसार नहीं चाहते, अब हम जो है पर ब्रह्म में एक हो जाना चाहते हैं। तो ये दो तरह के बताए गए हैं व्यक्ति, और श्रील प्रभुपाद इसके आगे बताएंगे और आगे जो जो श्लोक लेंगे कि वास्तव में इनमें से क्या ये वास्तव में सही मार्ग है या इनमें से कोई सही मार्ग है या दोनों ही गलत है, इसके अलावा कोई तीसरा सही मार्ग है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहां बताया जा रहा है एक तो होते हैं जो अपने पोजेशंस को देते हैं, यानी कि जो हमारी संपत्ति है हमारे पास कुछ धन है जैसे कि हाँ, तो उसको देना। तो ये सब आता है कर्मकांड सेक्शन में। कर्मकांड जो है, कर्मकांड में क्या होता है कि सांसारिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ही यज्ञ किए जाते हैं। ऐसे कि कई बार होते हैं ना पंडित वगैरह होते हैं उनको वो यज्ञ कराते हैं, देखिए जी आपको यज्ञ कराना होगा इसमें आपके 15,001 रुपए लगेंगे। इसमें जब आप यज्ञ कराएंगे तो आपके जो है पिछली 14 पुश्तों के सारे पाप नष्ट होंगे, वो भी नरकों से मुक्त होंगे, आप भी स्वर्ग में रहेंगे, वो भी स्वर्ग में रहोगे। तो इसके लिए जो है आपको यज्ञ कराना होगा। आपके जीवन में जो है ये कष्ट है, ऐसे ऐसे जो है आपके जो ग्रह हैं खराब है वो, तो आप अगर ये जो है इस तरह का यज्ञ आप करा लीजिए तो जो है आपके जीवन सुख आ जाएगा। तो उसमें क्या है, व्यक्ति जो है, तो ये सारे जो सैक्रिफाइस हैं, इस तरह जो यज्ञ हैं, ये किसमें आते हैं, ये कर्मकांड सेक्शन में आते हैं। कर्मकांड यानी कि संसार में जो है हम सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, संसार में सुख प्राप्त करने के लिए जो है कुछ सैक्रिफाइस करना, तो उसको जो है कर्मकांड सेक्शन माना जाता है। कर्मकांड भी जो है वेदों का पार्ट है और उसकी इंपॉर्टेंस है अपनी, हालांकि भक्ति नहीं है इसके अंदर। कर्मकांड में क्या है, इट्स अ बिजनेस, इट इज अ बिजनेस कि ये कुछ पैसे हैं ये ले लो और हमको ये बेनिफिट दे दो। तो जैसे कोई वो नहीं होता, जैसे कि दुकान वाला होता है, कोई छोटा बच्चा जाए उसके पास, अंकल मुझे 2 ब्लेड चाहिए 7 o'clock, तो जो है उसको कोई लेना देना नहीं होता, दुकानदार वाले को कहता है ठीक है लाओ दे दो पैसे, ये लो ब्लेड ले लो। हाँ, अगर यही बच्चा अगर अपने पिता के पास जाए, डैड मुझको 7 o'clock ब्लेड चाहिए, तो बेटा क्यों चाहिए, खेलने के लिए। हो गए बेटा ये खेलने की चीज नहीं होती, इससे ना कट जाता है, इसलिए मैं तुमको नहीं दूंगा। नहीं मुझे चाहिए, तो ना उसको एक रबड़ का ब्लेड दे देंगे, ले बेटा ले खेल ले इसे। लेकिन दुकान वाला उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज ही इज कंसर्न विद बिजनेस। तो एक जो देवी देवता जो होते हैं, इनको जो आहुतियां दी जाती हैं कर्मकांड सेक्शन में, ये बिजनेस ही होता है कि देखिए हम इतने इतने रुपए की इतनी इतनी आहुति देंगे और हमारे इतने इतने नष्ट हो जाए पाप और फिर हमारी ग्रेजुअल एलिवेशन हो जाए। इज दैट ओके, डील, डील, एक्सचेंज पेपर्स, हो गया। दिस इज कर्मकांड। तो ये क्या है, इट्स एक्चुअली सेल्फिश एक्सचेंज। लेकिन कर्मकांड जो है शास्त्रों में क्यों है, इफ इट इज अ सेल्फिश एक्सचेंज, इसका आत्म साक्षात्कार से कोई लेना देना नहीं है, हाँ, तो ये क्यों आता है, ये भला क्यों दिया गया शास्त्रों में, इसके पीछे रीजन है। कर्मकांड में सबसे बड़ा फायदा जो एक लिविंग एंटिटी को होता है, एक जीव को होता है, कई सारे फायदे हैं और वो उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां जो है देवताओं की आहुति की बात हो रही है। जैसे कि यहां पर है, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, देवताओं की, भगवान की नहीं, देवी देवताओं की। तो एक बेनिफिट ये होता है शास्त्रों में फेथ, कि ना उनको पता है कि ना ये पंडित जी जो अपने साथ ना ये कोई पोथी लेके आए हैं, इस पोथी में ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो बोल रहे हैं कि ऐसा यज्ञ करो तो ना तुम ऊपर चले जाओगे। तो क्या है, यानी कि इस व्यक्ति का उस पोथी में फेंकता है जिसको पोथी मानता है, भली वो हालांकि कर्मकांड पार्ट है वो शास्त्रों का, हाँ, जिसको कि वो पंडित जी लेके आए हैं अपने साथ, लेकिन उसका शास्त्र में ना फेथ आना शुरू हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज बाहर के लोग क्या मानते हैं शास्त्रों को, इट्स अ माइथोलॉजी, ये तो काल्पनिक रचना है, ये तो देखिए लोगों को ना डराने के लिए ये लिख दी गई है किताबें, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये माइथोलॉजी है। पीपल से लाइक दैट बिकॉज दे डोंट हैव फेथ इन द होली स्क्रिप्चर्स, अपना दिमाग नहीं लगाते। आयुर्वेद भी तो है शास्त्रों का पार्ट, वो माइथोलॉजी है, कौन कहेगा आयुर्वेद माइथोलॉजी है, नो वन, व्हाई, क्योंकि आयुर्वेद माइथोलॉजी नहीं है, इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड मेडिकल साइंस, है ना। तो जब आयुर्वेद जब माइथोलॉजी नहीं है तो वेदों का बाकी पार्ट जो हम कहें ओ दैट्स माइथोलॉजी, डज दैट मेक सेंस, नहीं। लेकिन इस तरह की नॉनसेंस लॉजिक जो है अक्सर लोग लगा बैठते हैं, ओ इट्स दिस माइथोलॉजी, आज की देखिए आज इनकी कोई वैल्यू नहीं है, आज हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं, टुडे वी हैव पीवीआर, टुडे वी हैव मॉल्स, आज एक अलग कल्चर है, ये जो है ये ग्रंथ वगैरह, दिस इज ऑल माइथोलॉजी, बट एक्चुअली दिस इज नॉट माइथोलॉजी। तो लेकिन कर्मकांड सेक्शन का एक उपलब्धि ये है, एक फायदा ये है दैट पीपल हैव फेथ, पीपल डेवलप फेथ इन द स्क्रिप्चर, ओके इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा यज्ञ कराने से ऐसा होता है, ठीक है हम कराएंगे, हाँ। सो फेथ इन द स्क्रिप्चर्स, सेकेंड बेनिफिट ये होता है इसमें कि ना व्यक्ति को यह सोचना शुरू कर देता है वो कि मेरी इंजॉयमेंट एक हायर अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वरना एक सांसारिक कर्मी आदमी क्या समझता है, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, आज मैं जो हूं वो अपनी मेहनत से हूं, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मेरी मेरी जो कामना है मेरी एम्बिशंस के कारण ही आज मेरे पास खुशी है, दिस इज एनिमल लाइफ एक्चुअली, ऐसे व्यक्ति के पास बुद्धि कम, बहुत कम है, सिर्फ अगर हार्ड वर्क सिर्फ हार्डवर्क या सिर्फ बैल की तरह काम करना ही खुशी का स्रोत होता, सिर्फ यही होता। तो एक्चुअली बैल जो होता सबसे खुश होता है या गधा सबसे खुश होता है, सबसे ज्यादा सेल्फ रियलाइज्ड, पर ऐसा नहीं होता। राइट, सो दैट्स व्हाई ये कॉन्सेप्ट आना कि मेरी खुशी एक हायर अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ये बिलीफ आना शुरू हो जाता है। दूसरा जो तीसरा फायदा इसमें क्या है, तीसरा फायदा यह है कि ना सैक्रिफाइस करने की जो प्रवृत्ति है वो शुरू होती है। क्योंकि जब पंडित जी बोलते हैं देखिए जी आपको यज्ञ कराना होगा और इसके लिए 5001 रुपए, 5001 रुपए पंडित जी ओके देता है, ठीक है ले लीजिए ना, उसकी हार्ड अर्न मनी है ये, बहुत मेहनत से उसे कमा के लेके आया हो, पर वो आपको सोच रहा है लेकिन खुशी मेरे को मिलेगी ना, तो इसलिए ठीक है रख लीजिए। अभी हार्ड अर्न मनी वो अपनी दे रहा है एक्चुअली, तो ये क्या आ रहा है एक्चुअली द फीलिंग ऑफ सैक्रिफाइस कि ना हमें कुछ दान भी करना चाहिए, तो फीलिंग ऑफ सैक्रिफाइस भले अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है कि मां के स्वर्ग जाऊंगा, हाँ मैं एंजॉय करूंगा अफसराओं के साथ दिस दैट, वो इस तरह ये सोच रहा है अभी वो, हाँ लेकिन कम से कम ये आना शुरू हो गया कि ना दान करना चाहिए यार, सब कुछ अपने पास नहीं रखना चाहिए, हाँ सबका FD नहीं करानी चाहिए, थोड़ा दान भी करना चाहिए, हाँ तो ये फीलिंग आना ये तीसरा बेनिफिट था। चौथा बेनिफिट इसमें क्या होता है एक्चुअली जितना सैक्रिफाइस किया जाता है, यज्ञ का क्या मतलब बताया गया, यज्ञ मीन्स विष्णु, तो भले ही देवी देवताओं को ये सैक्रिफाइस किया जाता है लेकिन एक्चुअली देवी देवता इसको किसको ट्रांसफर करते हैं, कृष्ण को या विष्णु को, बिकॉज ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, है कि नहीं। अब जैसे कि कांग्रीगेशन जो है यहाँ सहस्त्र प्रभु देख रहे हैं, हाँ अब मैं यहाँ जो डिवोटीज जो कीर्तन कर रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ अनीश प्रभु थे, मैं बोलूँ प्रभु ये ना कांग्रीगेशन के लिए मैं जो है ये सच एंड सच डोनेट करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे कि कहेंगे ओके मैं सहस्त्र प्रभु दे दूंगा, तो जाके वो सहस्त्र प्रभु दे देंगे, बिकॉज सहस्त्र प्रभु जो है वो कांग्रीगेशन के यहाँ पर हेड है। हाँ सो जो देवी देवताओं को जो दिया जाता है, देवी देवता क्या करते हैं, भगवान ये आप ही के लिए, दिस इज फॉर यू, तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन ये ऑफरिंग कहां जा रही है, कृष्ण को या विष्णु को, सो कृष्णा और विष्णु आर गेटिंग सैटिस्फाइड। हाँ तो ये चौथा बेनिफिट है। तो एक्चुअली जब भगवान की संतुष्टि के लिए भले इनडायरेक्टली ये काम कर रहे हैं वो, तो इस कार्य से क्या होता है, उनका सत्वगुण बढ़ता है एक्चुअली। नहीं तो जो व्यक्ति एकदम रजोगुण एकदम तमोगुण है उस वो भक्ति में आने का कोई चांस ही नहीं है उसका, लेकिन जब वो कर्म कांड की सेक्शन को जब करना शुरू करता है, हालांकि अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कर रहा है वो, लेकिन उसका फायदा उसको ये जो है साइड में फायदा मिलने शुरू हो गए उसे, तो एक तरह से उसको इंटेंशन एक्चुअली यही है कि चार बेनिफिट्स उसको दिए जाएं, लेकिन साथ में जो है क्या कर दिया हमने, उसकी पर्सनल एंजॉयमेंट की हमने जो है चीनी लगा दी साथ में, कि कड़वी दवाई है देखो खाओगे तो नहीं है ना, कड़वी दवाई तो नहीं खाओगे, अच्छा थोड़ी गुड़ के साथ, थोड़ा शहद के साथ, तो मेडिसिन दिए एक्चुअली इस तरह से शहद और गुड़ के साथ, so that people can come to gradually come to Krishna consciousness, धीरे धीरे वो कृष्ण भावना के स्तर पे आ सके। तो ये जो है ये कर्म कांड का सेक्शन आता है यहाँ पर, तो इसमें जो है भले ही अभी उसको क्लियर नहीं है कि ब्रह्म भगवान कौन है, इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बहु ईश्वरवादी। आज इंडियन घरों में आप देखें टिपिकल बहु ईश्वरवादी चलता है ना, घर मंदिर जो होता है उसमें जो होते हैं लक्ष्मी जी होते हैं, गणेश जी होते हैं, शायद कृष्ण भगवान भी हों, एक लड्डू गोपाल जी होंगे उसमें, उसके बाद फिर शिव जी भी होंगे, पार्वती भी होंगी, सरस्वती भी होंगी, और पता नहीं कौन कौन से होते हैं, हाँ पूरी रेलगाड़ी होती है एक मंदिर में, और फिर जिस दिन प्रमोशन हो या जिस दिन टेस्ट हो, भगवान जी भगवान जी भगवान जी भगवान जी भगवान जी मेरे को पास रहते, भगवान जी भगवान जी भगवान जी भगवान जी, बिकॉज ही डजंट नो कि परम भगवान कौन है, उसके लिए अभी सारी भगवान है, हाँ अभी वो जानता नहीं, अभी कर्म कांड लेवल में ना उसको सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति दिखती है कि बस मैं किस तरह से खुश होऊंगा, बस उसको यही दिखता है और कुछ नहीं दिखता उसे, तो इसलिए जो है वो सबको बराबर देखते हैं। इसलिए टिपिकल जो है आज इंडियन घरों में, हालांकि वैदिक संस्कृति जो पहले थी इसके पहले के युगों में सबको पता था कि भगवान जो है परम भगवान श्री कृष्ण है और उनकी सेवा के लिए जो है हमको सब कुछ अर्पित करना चाहिए, लेकिन अभी कलयुग में जो है काफी डिग्रेड हो गए, तो इसलिए जो है हमको पता नहीं रहता कौन है। अब जैसे कि किसी को नहीं पता सचिन तेंदुलकर कौन है, तो इंडियन टीम की फोटोग्राफ है, तो कहीं बताइए इसमें से बेस्ट बैट्समैन कौन सा है, अब एक गांव के व्यक्ति दिखाओ, यार सारे अच्छे लग रहे हैं, सब नीले में हैं, सब बढ़िया है, क्यों? क्योंकि अज्ञानता है, उसको पता नहीं कि ना इनमें सचिन तेंदुलकर है जो कि ना बहुत बढ़िया बैट्समैन है, अज्ञानता के कारण है ना। इसीलिए जो है टिपिकली जब भारत आज के कलयुग में जो भारत में जो घर भी मिलते हैं हमको, क्योंकि पता ही नहीं उन्हें कृष्ण परम भगवान है, इसलिए एक रेलगाड़ी है पूरी लगी हुई, हाँ पता नहीं परम भगवान श्री कृष्ण है, और क्योंकि यही नहीं पता परम भगवान श्री कृष्ण है इसलिए दान की प्रवृत्ति भी नहीं होती। जैसे कि एक एनालॉजिकल बताया जाता है किस तरह से जो है दान की प्रवृत्ति घटती है सतयुग से। तो सतयुग में क्या होता था कि ना जो कमाई लाई जाती थी हाँ उसको ना उछालते थे, और जो झोली में आ गया वो हमारा, जो नीचे गिर गया वो ठाकुर जी का, ठीक है। त्रेता युग में क्या हुआ, मैंने कहा देखो झोली तो इतनी छोटी होती है कैसे खर्चा चलेगा, तो क्या करते थे नीचे एक गोला बनाते थे जमीन पे, और फिर पैसा उछाला, जो गोले के अंदर गिरा वो हमारा, जो गोले के बाहर गिरा वो ठाकुर जी का, ठीक है। फिर तीसरा आया द्वापर युग, उन्होंने फिर क्या कहा यार देखो सर्कल तो उसका ना एक लिमिटेड होता है, तो लाइन खींच देते हैं, जो इस तरफ गिरा वो हमारा, जो उस तरफ गिरा वो ठाकुर जी का, और इस तरफ ही खड़े होकर फेंकते थे। तो थोड़ा यहां गिरा थोड़ा वहां गिरा, ठाकुर जी के लिए हो गया। फिर आया कलयुग, कलयुग में कमाई ली उन्होंने और उछाली, उन्होंने कहा भगवान जो आपको चाहिए कैश कर लो, जो बाकी नीचे गिरा हमारा। तो ये है कलयुग की उन्नति, हम बहुत स्मार्ट हैं, हाँ वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, लेकिन भगवान हमको फिर आउट स्मार्ट करते हैं, बिकॉज कृष्णा इज मोस्ट इंटेलिजेंट। हम सबकी बुद्धि जो है वास्तव में भगवान की बुद्धि की चिंगारी 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 भी नहीं है एक्चुअली, हम लोग की बुद्धि इतनी छोटी है। तो इसलिए जो है हम लोग कई बार भगवान को आउट स्मार्ट करना चाहते हैं, बट एक्चुअली भगवान हमको आउट स्मार्ट करते हैं By being our greatest well-wisher, वो इस तरह से जो है इस तरह के सेक्शंस देते हैं हाँ कि हम लोग प्रगति कर सकें। तो ये जो है कर्म कांड के सेक्शन जो है इसलिए आते हैं ताकि हम एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस शुरू करें, इसलिए जो है ये सेक्शंस आते हैं। तो कर्म कांड का जो है ऑफकोर्स अपना एक हिडन फायदा है, अनटोल्ड फायदा है, जो कि बताया नहीं जाता लेकिन वो मिलता है। दूसरा जो है यहां पर यज्ञ की जो बात हुई है, जो होता है कि ना ब्रह्म में एक हो जाना, ये ना पर ब्रह्म में भाई संसार हमने देख लिया, संसार बड़े कष्ट है जी, यहाँ जन्म लेना बड़ा मुश्किल है, यहाँ मृत्यु मिलती है वो भी बड़ी कष्टदायक है। मृत्यु पता है मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है, 40,000 स्कॉर्पियंस अगर एक साथ में यूं खड़े हो जाए, हाँ ऑन ए मार्क गेट सेट गो 40,000 अगर आपके शरीर पे, तो आपको जो आनंद आएगा उतना ही आनंद मृत्यु के समय आता है। तो मृत्यु वैसी नहीं आती जैसे अक्सर फिल्मों में देखते हैं ना आप, जिसमें कोई लेटा होता है हीरो और पूरी कहानी बोल के आराम से ऐसी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु जो शास्त्र में बताई गई है वो एक्चुअली गरुड़ पुराण में बताया गया कि 40,000 स्कॉर्पियंस अगर आपको एक साथ काटे, किश्तों में नहीं, इन वन गो सब खड़े एक साथ, उस आनंद को जो है हम हर एक योनि में भुगतते हैं जब हम ये शरीर छोड़ते हैं। तो कहते हैं भाई संसार में देखो कितना कष्ट मिला, बुढ़ापा बीमारी संसारी लोग क्या रिश्ते सब खोखले, हम तो उस पर ब्रह्म में एक हो जाना चाहते हैं। तो ये किया आहुति कि खुद की आहुति देना पर ब्रह्म, यानी कि भगवान के निराकार स्वरूप में खुद विलीन हो जाने का जो है ये क्या आहुति है। अब इसके अंदर फ्लॉ क्या है, इसके अंदर फ्लॉ है कि एक तो ये सेल्फिश है कि मेरे को दुख मिल रहा है मेरे को कष्ट मिल रहा है और इसलिए मैं सुखी होना चाहता हूं, इसलिए मैं पर ब्रह्म के साथ एक होना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि उस पर ब्रह्म से बहुत लगाव है, बड़ी प्रीति है, बड़ा प्रेम है, इसलिए क्योंकि ना संसार में मेरा बहुत बैंड बजा, इसलिए ना मैं एक हो जाना चाहता हूं। तो एक तो स्वार्थ है इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर फ्लॉ क्या है, फिलोसॉफिकल फ्लॉ क्या है। फिलोसॉफिकल फ्लॉ इसके अंदर ये है कि भगवान ने दूसरे अध्याय में गीता भगवदगीता के दूसरे अध्याय में बताया कि जो आत्मा है वो घुलनशील नहीं है। जैसे कि चीनी होती है वो घुलनशील है राइट, लेकिन जो आत्मा है वो घुलनशील नहीं है, अव्ययम, उसका व्यय कभी नहीं होता। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आत्मा जो है वो ब्रह्म में जाके विलीन हो गई, डिसॉल्व हो गई और एक हो गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तीसरा फ्लॉ इसके अंदर क्या है कि वास्तव में वो पर ब्रह्म से क्यों एक होना जाता है, आनंद ही खुशी में कि संसार में बड़ा कष्ट मिला है ना, पर ब्रह्म में जो है विलीन हो जाऊंगा खुश हो जाऊंगा, लेकिन खुशी की बेसिक प्रीरिक्विजिट है कि आपका अस्तित्व होना चाहिए। अगर आपका अस्तित्व नहीं है क्या आप एंजॉय कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल यहां बैठ के अगर मैं कहूं प्रभु एंजॉय गोविंदास, प्रभु हम जो मैं गोविंदा में हूं ही नहीं, गोविंदा में मेरा अस्तित्व इस समय है ही नहीं, तो मैं भला गोविंदा में कैसे जाकर प्रसाद एंजॉय कर सकता हूं, राइट है ना। तो यानी कि एंजॉय करने के लिए बेसिक प्रीरिक्विजिट क्या है, दैट वी शुड एग्जिस्ट। तो अगर हम कहें कि परब्रह्म में कोई विलीन हो गया, डिसॉल्व हो गया, वो खो गया उसके अंदर, एक हो गया, यानी उसका अस्तित्व तो नहीं रहा। जब अस्तित्व नहीं रहा तो वो खुशी का अनुभव कैसे करेगा, ये तीसरा फ्लॉ है इसके अंदर। तो इसलिए जो ये आहुति भी देते हैं, हाँ, तो ये दोनों ही इसलिए क्या है, इन दोनों के अंदर स्वार्थ है। एक में सांसारिक भोगों को लेकर स्वार्थ है, एक में सांसारिक भोगों को भोगते भोगते खुद जो है बुरे हाल हो गए, तो फिर इसलिए परब्रह्म में जाने का जो है दूसरा स्वार्थ है। तो ये दोनों ही स्वार्थ है वास्तव में, लेकिन वास्तव में जीव जो है इस स्वार्थ के परे जाने के लिए बनाए, निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करने के लिए बनाए। तो यहां जो अर्जुन है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुमने युद्ध कर लो और भक्ति, ये ना युद्ध करने के बाद ना तुम मेरे में विलीन हो जाना, तुम मेरे में एक हो जाओगे, नेवर एवर। तो ये दोनों आहुतियां जो बताई गई हैं वास्तव में, इन दोनों के पीछे क्या है, स्वार्थ होता है। हाँ, तो इसीलिए चाहे वो निर्विशेष ब्रह्म में एक होना हो, हाँ, या फिर जो है कर्मकांड सेक्शन हो, लेकिन दोनों के फायदे क्या हैं, शास्त्रों में फेथ आता है, एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस, ये सब जो है इसके हिडन फायदे हैं। अच्छा, अब जो सैक्रिफाइस है, जो त्याग है, उसमें भी जो है भगवान बहुत लॉजिकल है। उन्होंने कहा देखो, अब जो समाज में दोनों वर्ग हैं, ब्रह्मचारी भी हैं और गृहस्थ भी हैं, तो गृहस्थों के लिए अलग सैक्रिफाइस है और ब्रह्मचारी के अलग सैक्रिफाइस है। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, इनमें से कुछ जो विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रिया द्वारा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मतलब पॉइंट इज दैट दोनों के दोनों केसेस में इंद्रियों को जो है वास्तव में नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, और नियंत्रित कैसे होती है इंद्रियां, इंद्रियां नियंत्रित होती हैं जब इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया जाता है। ऐसा क्यों, आप कृष्ण की सेवा में बिना लगाए इंद्रियों को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, कोई पूछ सकता है, भाई हम नहीं करते हैं। हाँ, ये इस्कॉन वाले हैं जो कृष्ण की जो है सेवा में लगाने के लिए कहते हैं, हम तो नहीं लगाएंगे, हम तो वैसे ही कंट्रोल कर लेंगे, हम तो वैसे ही कर लेंगे, पर क्यों नहीं कर सकते, इसमें फ्लॉक है, इस बात को समझना है हमें। वास्तव में हमें जो इंद्रियां मिली हैं ये भगवान की शक्ति है। वास्तव में ये शरीर जो हमको मिला है ये भगवान की बहिरंग शक्ति है, भगवान की भौतिक शक्ति, मटीरियल एनर्जी है ये, चाहे वो हमारा ये शरीर हो, चाहे हड्डी मांस, ये एक एनर्जी है, इज मटीरियल एनर्जी है। तो ये किसकी एनर्जी है, दिस कृष्णाज एनर्जी, दिस इज नॉट आवर एनर्जी, ये हमारी शक्ति नहीं है, किसकी एनर्जी है, ये कृष्ण की। तो जिसकी एनर्जी होगी वो उसे कंट्रोल करेगा ना, क्योंकि ये हमारी एनर्जी नहीं है तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, राइट। जैसे यहां आप सबके पास मोबाइल फोन है, मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे मोबाइल फोन पे है, क्यों, क्योंकि मेरा है ना। लेकिन अभी यहां जो प्रभु जी के पास किसी के पास अगर मोबाइल फोन हो, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि मेरा स्वामित्व ही नहीं है उसके ऊपर, राइट। तो इसीलिए जो है ये जो इंद्रियां हैं इनके स्वामी कौन है, कृष्ण है, तो इनको कंट्रोल कौन कर सकता है, कृष्ण। इसीलिए इंद्रियों को कंट्रोल करना जो है का सिर्फ एक ही साधन है कि उन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, एंड देयर इज नो अदर वे। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं वो अपनी इंद्रियों को लगाते हैं श्रवण, हाँ, स्वाध्याय, हाँ, भगवान के बारे में डिस्कशंस करना, हाँ, इस तरह से जो है अपनी इंद्रियों को जो है वो कंट्रोल करते हैं, कि भगवान के बारे में विषयों में बहुत सुनना, हाँ, उनके ऊपर मनन करना, इस तरह से, लेकिन कृष्ण के साथ जोड़ के। बाकी गृहस्थों के लिए क्या बताया गया है कि वो जो इंद्रिय तृप्ति के साधन जो अवेलेबल है, क्योंकि गृहस्थों के पास तो होते हैं, क्योंकि धन धनाटे इकट्ठा कर रहे हैं तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी आप अर्जित करते हैं, जो भी आप पाते हैं, हाँ, जो भी आप कमाते हैं, उसको कृष्ण की सेवा में लगाने के भाव से यदि आप करते हैं, उसे उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं, कृष्ण की सेवा में लगाने के भाव से जब उसे प्राप्त करते हैं, इस तरह से अपनी इंद्रियों को आप कंट्रोल करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो वास्तव में ये इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ये देवी देवताओं की सेवा में लग के नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। क्यों, इस भव सागर से अगर हमें निकलना है तो हम देवी देवताओं की पूजा करके क्यों नहीं निकल सकते। कोई कह सकता है आप कह रहे हो कृष्ण की सेवा में लग के, मैं तो साईं बाबा की पूजा करके निकल जाऊंगा, हाँ, या फिर मैं इंद्र की मैं पूजा करूंगा, मैं निकल जाऊंगा वैसे। हाँ, पर इंद्र क्यों नहीं निकाल सकते आपको, क्योंकि इंद्र खुद फंसे हुए हैं। इंद्र इज अ पोस्ट, इंद्र जो है पोस्ट है जो कि भौतिक संसार में ही है, तो व्यक्ति आपको नहीं निकाल सकता। जैसे खुद के हाथ बंधे हुए आपके हाथ खोल सकता है नहीं, तो देवी देवता भी नहीं खोल सकते। तो ग्रेजुअली जो है व्यक्ति इस लेवल पे आता है कि वो जान पाता है कि परम भगवान श्री कृष्ण है और मुझे उनकी सेवा में लगना चाहिए ग्रेजुअली। और यदि उनको हम संतुष्ट करेंगे तो देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, जैसे कि एक बार एक मालिक था, उसका उसका उसने उसने घर में पंडा रखा हुआ था, एक नौकर भी रखा हुआ था माली। हाँ, तो देखा कि जो पंडा है वो लगा हुआ है, उसके आगे थाली बड़ी हुई है और थोड़ा सा वो सब्जी लेता है और नाक में ला ले कहता है ओम नासिकाभ्याम नमः, उसका थोड़ा और सब्जी ले और आंखों में लगाया ओम नेत्राभ्याम नमः, थोड़ा कान में डाले ओम कर्णाभ्याम नमः, ओम वक्षस्थलभ्याम नमः, सब्जी यहाँ लगा ली। हाँ, कहा भैया ये क्या कर रहे हो तुम, पगला गए हो? तो कहते हैं अरे अगर मैं नाक में डालूंगा तो मेरी नाक अच्छी होगी, कान में डालने से आंख जो है आंखें रिष्ट पुष्ट हो जाएंगी, कान रिष्ट पुष्ट हो जाएंगे, शरीर पे लगाऊंगा मेरा शरीर बलवान हो जाएगा क्योंकि खाने से पोषण मिलता है ना, तो इसीलिए जो है खाना मैंने जो है यहाँ लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, सनकी हो गए तुम, पेट में डालो अपने आप फलेंगे फूलेंगे, क्या लगा रखा तुमने ये? तो बाहर गया, फिर बाहर देखा माली जो है वो होता है ना शॉवर वाला, क्या बोलते जो, हाँ स्प्रे, हाँ स्प्रे कर रहा है पत्तियों के ऊपर, अभी हरी रहेगी, ये भी अब हरी रहेगी, इस तरह से पत्ते पत्ते के ऊपर जो है वो छिड़काव कर रहा है। कहता पगला गया क्या कर रहा है ये? कहते हैं ये जो है ना पत्तियां हरी रखने के लिए ना इनको मैं पानी दे रहा हूं मैं। हाँ, मूर्ख आदमी, यहाँ प्रभु जी जो कह रहे हैं उनकी बात नहीं सुनता तू, जड़ में पानी देना चाहिए, जड़ में पानी देगा अपने आप पत्तियां हरी रहेंगी। तो वास्तव में जो है इसका शिक्षा यही है कि जिस तरह से उदर में हम खाना डालते हैं तो पूरे शरीर को पोषण मिलता है, जब हम जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो रहता है, उसी तरह से जब हम भगवान श्री कृष्ण के लिए जब सारे कार्यकलाप करते हो देवी देवता अपने आप खुश हो जाते हैं, अपने आप खुश होंगे क्योंकि वो जानते हैं हमारे नाथ वही है। इसलिए कई बार जब लोग आते हैं हाँ कृष्ण कॉन्शियस में तो ना शुरू बड़ा डर लगता है उन्हें, प्रभु जी हम तो हनुमान जी के भक्त रहे हैं, आप कह रहे हो कृष्ण भगवान की भक्ति करो, आप हनुमान जी कहेंगे अच्छा बेटे मेरे को छोड़ दिया है, मंडे क्लास में जाते थे तुम गीता सुनने के लिए मेरे को भूल गए अब है, मंगलवार को बूंदी चलाते थे तुम, कमाल करते हो है, भुला दिया, अब बता दो तुम्हें, अब बताऊंगा तुमको मैं, नहीं 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 हनुमान जी नहीं नहीं मैं अभी का भक्त हूं वो तो। द पॉइंट इज दैट क्या हनुमान जी ऐसा करेंगे? नो, हनुमान जी ओ जिनकी मैं पूजा करता हूं जिनकी मैं भक्ति करता हूं तुम भी उन्हीं की भक्ति में लगो, वेरी गुड वेल डन ऑल द बेस्ट, तो हनुमान जी गुस्सा नहीं होंगे। इसलिए कोई देवी देवता जो है नाराज नहीं होते, कहीं कभी जो है भक्तों मन में भय रहता है कि भाई कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो नाराज ना हो जाए, इसलिए शुरू शुरू में क्या होता है कि भक्त जब उन्हें बताते हैं भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है तो भगवान श्री कृष्ण का भी वो तस्वीर ले आते हैं, लेकिन बाकी भी लगे रहने देते हैं कि देखो आप नाराज मत हो ना, देखो भगवान कृष्ण इज अ न्यू मेंबर ऑफ, ही इज अ न्यू मेंबर है तो डोंट माइंड, तो ये भय रहता है अभी। पर ऐसी देवी देवता तो वो खुश होंगे, ओह यस गुड जॉब, हम यही तो चाहते थे कि तुम इस स्तर पे आओ। तो इसीलिए जो है ये सैक्रिफाइस की जो भावना है ये धीरे धीरे क्या होती है देवी देवताओं से, ये जो अल्टीमेटली क्योंकि विष्णु संतुष्ट हो रहे हैं इससे, तो वो जो है सतोगुण व्यक्ति ना ये विचार करना शुरू करता है कि हाँ कोई परम भगवान है, हाँ जिनका नाम भगवान श्री कृष्ण है मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, ये बुद्धि आनी शुरू होती है। सो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि ओके कर्मकांड इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इस्कॉन में देखते हैं इस्कॉन में कोई कर्मकांड का है नहीं सेक्शन, कि हाँ कोई हवन हो रहे हो श्वाहा श्वाहा आयुजा होती डालिए श्वाहा, ऐसा देखा आपने इस्कॉन में? नहीं होता, सब नाच रहे गा रहे बस कीर्तन ही करते हैं यहाँ पे, तो सब इस्कॉन में है नहीं कर्मकांड का सेक्शन, लेकिन कर्मकांड को बता रहे हैं कर्मकांड से व्यक्ति जो है ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, उसको ये मिलता है, उसको ये फायदा होता है। तो इसके लिए जो है भगवान ने इसका उत्तर दिया है भगवद गीता में, भगवान ने कहा जो कार्य आप कुएं से पूरा कर सकते हो वो नदी से आप आराम से कर सकते हो, बल्कि नदी से कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो, राइट जैसे कि अगर स्विमिंग करने का मन है या मैं कुएं में स्विमिंग करके आता हूं तो बाय बाय, क्योंकि कुएं में कोई स्विमिंग नहीं कर सकता, पानी निकाल सकते हो है ना थोड़ा बहुत नहाने के लिए कपड़े धोने के लिए, या कोई मैं कुएं में फिशिंग करूंगा, हाँ कर सकता है वो? नहीं कर सकता। तो लेकिन ये जो कपड़े धोने नहाने का काम है ये नदी से हो सकता है, नदी में बल्कि आप स्विमिंग भी कर सकते हो है ना, और भी कोई अगर आपको कार्य करने, तो नदी जो है, नदी का पानी या नदी जो है, नदी से जो है आप खेतों में पानी डाल सकते हो, इरिगेशन कर सकते हो है ना। तो ऐसे कई पर्पस हैं जो कि आप नदी से कर सकते हो जो कुएं से नहीं कर सकते। तो कुएं के सारे कार्य नदी कर सकती है ऑलरेडी। उसी तरह से भक्ति योग जो है वो आपको वो हर वो चीज दे सकता है जो कर्मकांड दे सकता है, बल्कि भक्ति आपको और भी बहुत कुछ देने वाला है, उससे ऊंचा और उससे बहुत ज्यादा। तो इसलिए कर्मकांड की आवश्यकता ही नहीं है हमें। इसलिए अगर कोई पशु जैसी चेतना वाला भी है लेकिन अगर वो हरिनाम संकीर्तन में यदि वो बैठा है तो उसका उद्धार निश्चित है, क्योंकि ये भगवान के नाम में पावर है। पर क्योंकि लोगों के अभी भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं होती, इसीलिए जो है वो उनका उनका जो है प्रगति थोड़ी स्लो हो जाती है। जैसे कि रामायण में बड़ी अच्छी कथा आती है कि जब भगवान राम ने रावण को मार दिया और विभीषण को जो है बिठा दिया था, हाँ तो नहीं अभी विभीषण को नहीं बिठाया था, विभीषण जो है भगवान के साथ ही थे और फिर भगवान ने बाद में उनको बनाया था, कोई बात ही कर रहा है। तो कल कुछ राक्षस से जो बच गए थे, हरे कृष्णा बातें कौन कर रहे हैं, हरि बोल प्रभु, कंट्रोल रूम आपकी आवाज आ रही है थोड़ा सा धीरे। तो कुछ राक्षस बच गए थे रावण की सेना में, उन्होंने कहा देखिए विभीषण जी मेरे को ना मुझे जाना है लंका वापस जाना है, हाँ क्योंकि कुछ बंदी बन के आ गए थे सिर्फ, तो मुझे जाना है वापस। कहते ठीक है, कहते लेकिन समुंदर है अब मैं उसको पार कैसे करूंगा, हाँ कहे समुंदर तुम ऐसे पार करना कि मैंने उन्होंने क्या कि एक पर्चा लिया उस पर कुछ लिखा, हाँ पर्चा नहीं था एक पत्ता था एक, उसको फोल्ड कर दिया और कहते क्या कि इसको खोलना मत, इसको पकड़े रहो समुंदर पार कर जाओगे। कहते समुंदर पार कर जाऊंगा ओके ठीक है, निकल गया चलता गया चलता गया चलता गया, एक्चुअली जो है समुंदर का पानी घुटने से जा नहीं रहा, 50% समुद्र उसने पार कर लिया चलते चलते 50%, और घुटने से ऊपर पानी जा नहीं रहा। कमाल हो गया यार, क्या दे दिया विभीषण जी ने इसमें, इस पत्ते में ऐसा क्या खास है कि घुटने से ऊपर जा नहीं रहा पानी। नहीं लेकिन विभीषण जी ने कहा था खोल के मैं देखना, चलता हूं यार चलते 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 एक बार देख लो यार ऐसा क्या डाल दिया इस पत्ते के अंदर कि समुंदर घुटने के ऊपर जा ही नहीं रहा, नहीं नहीं खोलना नहीं है चल एक बार खोल के देख लेते हैं। उसने खोला, राम ये दो अक्षर का नाम, ये मुझे बचा रहा समुंदर से, अरे धत। जैसे ही उसने ये सोचा समुंदर पूरा आया उसे डुबो के ले गया। तो इस तरह से हम भी भव सागर में यहां संसार के समुंदर में जो तैर रहे हैं हम लोग, तो भगवान का नाम जो है यही हमारा सहारा है। इसमें अगर किसी की श्रद्धा नहीं है हाँ तो उसका तो बेड़ा गर्क होना ही होना है उसका, क्योंकि भगवान का नाम जो है ये सबसे आसान तरीका है आत्म साक्षात्कार का और सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीका है, मोस्ट इजी एंड मोस्ट इफेक्टिव। अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं, कोई चीज जब बहुत आसानी से सुलभ होती है तो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, जो बड़ी दुर्लभ होती है उसको इफेक्टिव माना जाता है संसार में है ना। लेकिन भगवान का ये जो नाम है ये बहुत ही आसान है लेना, राइट हम कहीं भी ले सकते हैं एनीवेयर। तो ये जो भगवान का नाम है ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है और सबसे ज्यादा आसान है, वास्तव में हम इसको कहीं भी ले सकते हैं राइट। इनफैक्ट पिछले युगों में जो युग है के पिछले युगों के जितने भी योगी या आध्यात्मवादी रहे हैं उनको कभी कभी ईर्ष्या होती है कलयुगियों से कि हमने क्या क्या तपस्या नहीं की, हम लोग कहाँ कहाँ जाते थे, क्या क्या आसन लगाते थे, प्राणायाम करते थे, फलाना ढिमकाना क्या क्या करते थे, और ये कलयुग के लोग नाचते गाते हुए धाम को चले जाते हैं, ये लोग भगवान का नाम कीर्तन करें एंड देन दे गो बैक होम बैक टू गॉड। कितना आसान बना दिया बताइए, तो ये किसकी कृपा है, ये भगवान की कृपा है, और विशेष रूप से इस कलयुग में ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं हमको ये हरिनाम देने के लिए, स्वयं भगवान आए हैं, भगवान ने अवतार नहीं लिया, स्वयं आए हैं वो। श्री चैतन्य महाप्रभु इनकार्नेशन नहीं है। एक बार एक भक्त ने से पूछा प्रभुपाद जी ने, कुछ शिष्य थे, प्रभुपाद जी ने कहा हु इज लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो एक शिष्य ने कहा ही इज इनकार्नेशन ऑफ कृष्ण, वो कृष्ण के अवतार है। प्रभुपाद जी ने कहा गलत, वो कृष्ण के अवतार नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है। तो भगवान के जितने अवतार हैं उनमें 60 गुण हैं, लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु में भी 64 गुण हैं, इसलिए उनमें 60 गुण नहीं है। चाहे भगवान राम हो चाहे नारायण हो, इन सब में 60 गुण हैं, लेकिन श्री कृष्ण में 64, क्योंकि वो आदि पुरुष है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो वो आए हैं हरिनाम देने के लिए। और विशेष बात यह है कि हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, चैतन्य महाप्रभु आते हैं 1000वें कलयुग में, यानी कि इसके बाद के 999 कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे। उनके अवतार आते हैं, उनका नाम है गौर नारायण, वो भी हरिनाम संकीर्तन कराते हैं और वैकुंठों तक लेके जाते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन जो कि वैकुंठों में सर्वश्रेष्ठ है, वहां लेके जाने के लिए परम भगवान श्री कृष्ण आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं। तो हरिनाम संकीर्तन हर कलयुग में होता है, हाँ, जो नाम यज्ञ है ये, हाँ, हमने जो बाकी यज्ञों की बात की, हाँ, लेकिन यज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो नाम यज्ञ, और कलयुग में सिर्फ यही यज्ञ एप्लीकेबल है, क्योंकि वास्तव में अदरवाइज जो यज्ञ किया जाता है उसमें सब कुछ, उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। जैसे आहुति जो दी जाती है उसमें जो घी होता है वो गाय का होना चाहिए। हमारे पास गाय है, हाँ? कौन सी गाय है हमारे पास? जर्सी गाय, जो कि इंजेक्शन देके बनाई गई है सारी, हाँ, वो गायें हैं नहीं, पता नहीं कौन सी योनि है वो तो, हाँ। और ज्यादातर जो आजकल घी मिलता है वो यूरिया और उसका बना हुआ है, वो गाय का भी नहीं है, भैंस का भी नहीं है वो तो, हाँ। और बीफ के लिए तो अब जो इंडिया है नंबर 4 सप्लायर है बीफ के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हमारी प्रगति है। तो जब गाय है नहीं तो दूध आ कहां से रहा है? इसकी सप्लाई तो बढ़ रही है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, तो दूध आ कहां से रहा है? कभी कोई सोचे कहां से आता है दूध? ये दूध बनता है यूरिया से, ये दूध बनता है कॉस्टिक सोडा से, और ये जो है हड्डियों को कमजोर करता है। तो कोई कहता है मैं बहुत दूध पीता हूं मैं, हाँ, लेकिन हड्डियां उसकी जो है अंदर से ब्रिटल हो रही हैं, कमजोर पड़ेंगी, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि गाय का है नहीं है। क्यों? क्योंकि गाय ही नहीं है, गाय ही नहीं है, है तो भैंस है। जो भैंस का दूध पिएंगे तो भैंस जैसी बुद्धि होती है, अकल बढ़िया, भैंस क्योंकि भैंस का दूध पिया है, राइट? और जो गायों से निकाला जाता है तो मशीनों से निकाला जाता है। अब मशीन को ये नहीं पता कि दूध में अब थन में दूध बचा है कि नहीं, वो तो निकालती रहती है वो तो मशीन, तो उसमें ब्लड भी आता है, और ये दूध जो है दुनिया वाले पीते हैं सब। और यही एक कारण है कि लोग आध्यात्मिकता में क्यों नहीं जुड़ पा रहे, क्योंकि हमारा इनटेक ही ऐसा है, जैसा अन्न वैसा मन। तो अब ये आहुति देंगे तो किसकी देंगे? इस तरह के दूध की, हाँ। तो ये तो इंग्रेडिएंट्स की बात हो गई। उसके बाद ब्राह्मण तो माशाल्लाह है आजकल के, बाप रे बाप। एक ब्राह्मण जो था उसके बोला गया कि देखो जी ये विवाह का है, हम आपको 5001 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। कहता जी हमारा रेट है 10001 रुपए, हम 10001 रुपए से कम लेते ही नहीं है, हम कहीं और चले जाएंगे। कहते हैं ये पंडित जी आपको जाना तो कहीं नहीं है, आप यहाँ यज्ञ करा के लेके यज्ञ करा के जाओगे, और ये 5001 रुपए कर रहे हो कि नहीं? अरे अच्छा ठीक है, आप जबरदस्ती कर रहे हो तो ठीक है कर देते हैं। कर दिया उसने यज्ञ, विवाह का यज्ञ हो गया। बाद में अपने साथी को बोलता है 5001 रुपए में कोई यज्ञ कराता है इस तरह से? हमने तो संस्कार के मंत्र पढ़ दिया हमने तो। ये है आज के ब्राह्मण, जो एक कुल से ब्राह्मण चले आ रहे हैं जी। वो शर्मा है जी, हम भी शर्मा है, हम इसलिए ब्राह्मण है, हाँ। वो हम भी खत्री हैं, इसे हम क्षत्रिय हैं। तो वास्तव में कालो शूद्र संभवा, कलयुग में सब शूद्र ही हैं और जन्म से सब शूद्र ही होते हैं। उसके बाद तो क्वालिटीज जो डेवलप करेंगे तो वो व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय होता है, जैसी ट्रेनिंग आगे दी जाती है गुण कर्म विभागश। तो जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, ये हम चौबे हैं, तो हम ब्राह्मण हैं। तो चतुर्वेदी का मतलब उसने चार वेद नहीं पढ़े। त्रिवेदी, हम जी त्रिवेदी हैं। अच्छा, हमने तीन वेद नहीं पढ़े, ओ ओके। द्विवेदी हैं हम, द्विवेदी मतलब दो वेद नहीं पढ़े। तो वास्तव में सारे सारे निर्वेदी हैं, शास्त्र पढ़ते ही नहीं है वो। हाँ, तो ये ब्राह्मणों का हाल है। तो ना तो जो फायर सेक्रीफाइस करने वाला है, ना तो उसके अंदर योग्यता है, ना वो जिस जगह वो जिसका सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि आहुति जो चढ़ाई जा रही है, ना उसके अंदर शुद्धता है। तो इसलिए फायर सेक्रीफाइस जो है कलयुग में असंभव है करना, मतलब शुद्ध तरीके से, आइडियल तरीके से किया ही नहीं जा सकता। इसलिए सिर्फ नाम संकीर्तन यज्ञ ही सहारा है हमारा। कहे प्रभु जी इसमें आहुति कहाँ है, इसमें यज्ञ होना चाहिए, आहुति होती है ना, आहुति होती है, हवन कुंड होता है, कहाँ है इसके अंदर? तो आहुति है भगवान का नाम, और हवन कुंड है कान आपके। तो यही है नाम यज्ञ, यहां से जाएगा और कान में जाएगा। हाँ, तो मुंह से निकले कान में जाए, ये बात कहां सीखते हैं हम? इस कान में। इसलिए हमने सोसाइटी का नाम इस कान रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि कान के द्वारा ही, कानों से जब भगवान का नाम लेंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस चेंज होगी। हाँ, तो इसे जो है भगवान का नाम का यज्ञ ये हमें करना चाहिए वास्तव में, नहीं तो ये जो फायर सेक्रीफाइस और बाकी यज्ञ है इनमें फ्लॉज है। हाँ, तो भगवान का नाम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है यज्ञ करने का तरीका, भगवान का नाम। भगवान का नाम, भगवान के नाम में भी जो है वैरायटी ऑफ कोर्स, एक होते हैं भगवान के सेकेंडरी नेम्स, एक होते हैं प्राइमरी नेम्स। सेकेंडरी नेम्स हैं जो कि बताते हैं कि भगवान सर्वसाक्षी हैं, परमात्मा हैं, हाँ महानतम हैं, ये भगवान के नाम है, परमात्मा और ब्रह्मन, ये सब नाम भी हैं भगवान के। लेकिन जो मुख्य नाम है वो भगवान की लीला से संबंधित नाम है, जैसे कि गोविंद, श्याम सुंदर, राधानाथ, गोपीनाथ, पार्थसारथी, ये भगवान के मुख्य नाम है। और इन नामों में जो है, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको नाम दिया है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नाम यज्ञ है, अभी हमने नाम यज्ञ किया हमने सबने मिलके, हरे नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, हम 5-7 मिनट तक कुछ प्रश्न लेंगे। यस, यस, कोई सवाल नहीं? हाँ, निर्विशेषवादी का मतलब जो भगवान के जो गुण हैं, हाँ, उनमें कोई विशेषता नहीं देखता वो, यानी कि निराकारवादी, जो कहते हैं कि भगवान जो है निराकार है, एक तू निराकार, कहीं पर देखा ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा था मैंने, कहीं पर देखा है एक तू निराकार, बाकी सबका आकार, हमारा आकार, तुम्हारा आकार, लेकिन भगवान है ना वो निराकार। देख कितनी अजीब बात है, हा? हमारा आकार रहा है, हमारे पिताजी का आकार, पिताजी के पिताजी का आकार, उसके पिताजी का आकार, दादे का आकार, परदादे का आकार, लकड़ दादे का आकार, लेकिन वो परम भगवान है ना वो निराकार। तो ये वहां से अज्ञानता की बात है। जैसे कि अब ये जो लाइट निकल रही है ये निराकार है, लेकिन जिस बल्ब से निकल रही है उसका आकार है ना। इसी तरह से जो है भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान का प्रकाश है, वो निराकार है, लेकिन जिनसे निकल रहा है उनका आकार है, बहुत सुंदर आकार है, और वो है श्याम सुंदर श्री कृष्ण। तो श्याम सुंदर जी के जो है कांति है ये वास्तव में। तो लोग कहते हैं बस ये यही सब कुछ है, देखिए जो रोशनी है बस यही सब कुछ है, लेकिन रोशनी आ कहां से रही है? बल्ब से आ रही है ना। उस तरह से जो परब्रह्म की बात करते हैं, निर्विशेष की बात करते हैं, लेकिन ये निर्विशेष या निराकार ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति आ कहां से रही है? ये भगवान श्री कृष्ण की जो है स्वरूप की कांति है ये, इट्स लाइक दैट। तो इसलिए जो है परब्रह्म में एक नहीं होना चाहता भक्त, भक्त चाहता है कि मैं उस परम स्त्रोत परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता हूं। हाँ, मुझे परम ब्रह्म नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उन परम भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा चाहिए, बस और कुछ नहीं। और प्रेम का जो आनंद है वो हम सोच भी नहीं सकते, वो हम सोच भी नहीं सकते, वो हमारी कल्पना के परे है प्रेम का आनंद। इस संसारी कामुकता को हम कभी कभी प्रेम समझ लेते हैं, हाँ, लेकिन संसारी कामुकता को प्रेम समझना वैसा ही है कि हम बांस को गन्ना समझें और उसको चूस चूस के जो है उसे उसमें एंजॉयमेंट कर लें। गन्ना और बांस बाहर से एक जैसे दिखते हैं राइट, लेकिन अंदर कितना फर्क होता है उसमें राइट। तो उसी तरह से अगर कोई सोचे जो बांस को देखे बस यही गन्ना है और इसी में जो है खुशी है और छील छील के उसे खाए, हाँ, तो मूर्खता है वास्तव में, क्योंकि वो जानता नहीं कि गन्ने और बांस में फर्क क्या है। उस तरह से सांसारिक व्यक्ति प्रेम में और सांसारिक वासनाओं में फर्क नहीं जानते, हाँ, इसलिए वो वैलेंटाइन डे बनाते हैं 14 फरवरी को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं प्रेम होता क्या। आई लव यू, बट आई लव यू के विषय मीनिंग ही होता है आई हैव लस्ट फॉर यू, आई वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट यू। आर यू रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड? ओह यस, आई लव यू टू, ओह यस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट यू। डू यू हैव एटीएम कार्ड? गुड, सो लेट्स गो समवेयर टू McDonald's, you pay. Happy Valentine's Day. तो संसार की जो कामुकता है उससे जो आनंद है वो तो आनंद भी नहीं, वो दुख है बल्कि। तो प्रेम का जो आनंद है भगवान की भक्ति में, प्रेम में प्रेम का आनंद है, वो तो कल्पना के परे, वो हम बुद्धि से समझ नहीं सकते, इतना आनंद है, वो संभाल नहीं सकते उस आनंद को। इसीलिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर उस आनंद को संभाल ही नहीं सकता, भगवान की भक्ति का, प्रेम में भक्ति का जो आनंद है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? निस्वार्थ भाव से कि भगवान मैं बस सिर्फ और सिर्फ आपके प्रति अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूं, कि भगवान मैं आपका हूं, मैं आपके लिए ही जीना चाहता हूं, मैं कमाऊंगा तो आपके लिए, मैं सांस ले रहा हूं तो आपके लिए, मेरी वाणी, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा सब कुछ सिर्फ आपका है। इस कन्विक्शन के साथ जीना। तो भले फिर हमारे पास कुछ हो, पोजेशंस हो चाहे ना हो, चाहे कोई हमारी कोई तारीफ करे या कोई हमारा अपमान करे, लीस्ट बॉदर्ड, क्योंकि प्रेम जो है वो चेतना को इतना ऊंचा ले जाता है कि अब कि सब छोटी लगती है चीजें। हाँ, जैसे कोई बड़ी स्काई स्कैपर बिल्डिंग को देखे, बड़ी बड़ी दिखेंगी, पर अगर कोई एरोप्लेन में है तो क्या दिखेंगे, वो माचिस की डिब्बियां दिखेंगी। तो इस तरह से भगवान के प्रति प्रेम में भक्ति से जो है चेतना इतनी ऊंची हो जाती है वास्तव में कि इस संसार की जितने आकर्षण और आनंद और जो कुछ भी है, कुछ नहीं, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो जो है चेतना का स्तर आता है वास्तव में। तो वो उसके लिए जो है स्रोत क्या है, तरीका यही है दैट यू आर चैंट द होली नेम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और किसी को सवाल? इंद्रियों कैसे कंट्रोल करते हैं? हमने बताया कि इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए इनको कृष्ण की सेवा में लगा कर ही कंट्रोल किया जा सकता है, देयर इज नो अदर वे। हाँ, ओ यस, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है भाई, वाई? हाँ, भगवान करे तो रास लीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, Why so? Okay, now first point is that can we copy Krishna? If we want to copy Krishna, then we have to copy him 100%. Krishna gopiyan hain, aap gopiyan rakhna chahte hain? Done. Kitni chahiye? We'll supply. No problem. Lekin but you have to copy Krishna 100%. Bhagwan Shri Krishna ne 7 दिन तक अपनी लेफ्ट हाथ की उंगली के सबसे छोटी पिंकी फिंगर के नाखून के ऊपर गोवर्धन को उठाया था, राइट? मैं कह रहा हूं आप कुछ मत उठाइए, आप बस 7 दिन खड़े हो जाइए, नेचर कॉल आए संभालिए, कहीं मत जाइए, 7 दिन 7 रात आपको कुछ नहीं उठाना, आपको हाथ भी नहीं खड़ा करना, बी लाइक दिस 7 दिन बस, कॉपी कृष्णा। भगवान ने जो है ये सृष्टि की रचना की है, आप एक टेनिस बॉल बना दो अपने अंदर से बस, हम कहेंगे लो बना लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैनॉट कॉपी कृष्णा, ठीक है। दूसरी बात माखन चोर की बात, ये कृष्ण तो माखन चोर है। अगर कृष्ण को सिर्फ मक्खन को ही खाना होता तो वो अमूल के व्यक्ति जो है मालिक है उससे दोस्ती करते, कम ऑन मैन बहुत मक्खन बनाते हो यार, थोड़ा मक्खन दे देना। लेकिन वास्तव में वो क्यों नहीं जाते, हम भी मत मक्खन बनाते हैं कि भगवान आ जाओ, हाँ, वाई? बिकॉज कृष्ण जो है वास्तव में वो वो जो मक्खन है ना, वो दूध का बना हुआ मक्खन नहीं है, वो भगवान के भक्तों के हृदय का जो प्रेम है ना, वो उसने वो मक्खन का रूप लिया हुआ है, उसका आस्वादन करते हैं भगवान. सो इज अ फॉर्म ऑफ लव ऑफ कृष्ण फॉर लव ऑफ द डिवोटीज फॉर कृष्ण. इसलिए उनको मक्खन से लेना देना नहीं, उनको उस वो जो प्रेम का द्रव्य है ना, जो मक्खन जैसे दिख रहा है, उनको उससे लेना देना है. तो कोई गोपियां बनाना चाहते हैं, बनाए ऑफ कोर्स, पर कैन यू हैंडल. एक तो कपल संभाला नहीं जाता. हाँ रोजी, मैं अपने पति से बहुत तंग हूं, रोजी मेरी पत्नी मेरी जान खा जाती है, तो एक तो संभाला नहीं जाता हमसे. हाँ फिर 16,108 कैसे संभालेंगे, वो तो उनकी पत्नियां हैं, बाकी गोपियां अनंत हैं, उनकी पत्नियां भी अनंत हैं, देयर इज नो मतलब कोई काउंटिंग नहीं है उसकी, समझते हैं हम लोग. तो समवन सेड, प्रभुपाद जी ने एक बार बोला, इवन इफ वी थिंक दैट कृष्णा इज लस्टी, या मान भी नहीं कृष्ण जो है बड़े कामुक हैं, बड़े लस्टी हैं, देन ही इज इनफाइनाइटली लस्टी, इवन इन दैट वी कैन नॉट कॉम्पीट विद हिम. अगर हम ये मान भी लेंगे कृष्णा इज लस्टी, कृष्णा इज नॉट लस्टी, इज मोस्ट लवेबल. तो ये बात हमें समझनी है, दैट वी कैन नॉट कॉपी कृष्णा, वी आर मेंट टू लव कृष्णा, और यही हमारे अस्तित्व का अर्थ है. कोई कह सकता है हमारा अस्तित्व क्यों है, जीव या आत्मा का अस्तित्व इसलिए है कि वो भगवान के साथ उनकी प्रेममय सेवा कर सके, उनकी प्रेममय लीलाओं में प्रवेश कर सके. इसीलिए हमारा अस्तित्व है, दैट्स वाई वी आर एग्जिस्टिंग, हमारा आत्मा का अस्तित्व इसीलिए है, यही अस्तित्व है. इधर प्रभुपाद जी बोला करते थे, प्रभुपाद जी ने कहा that the perfection of life is to join Radha Krishna's dance party. What does that mean? Radha Krishna's dance party means ki bhagwan ki leelaon mein pravesh karna, that is perfection of life. Abhi hum maya ke jo dhindore hai, jo dhol hai, us pe dance kar rahe hain abhi, hain aur dukh pa rahe hain. To bhagwan ki leelaon mein jo anand prapt karna chahte hain, to uske liye hame bhakti karni hogi. So we are not supposed to copy Krishna, we are meant to follow Krishna and love Krishna. We cannot even understand Krishna. Prabhupada ji ne ek baar bola ki you cannot understand Krishna, just love him. That's it. To bhagwan ko samajh bhi nahi sakte, is buddhi se kya samjhenge? Ye itni si daya buddhi hai. Ha. Yeah. Ha. Jo char gun hai, wo hai vedu madhurya, roop madhurya, leela madhurya aur prem madhurya. Ye jo hai char gun sirf bhagwan shri krishna mein hi hai. उनके अवतारों में नहीं है. जैसे लीला माधुर्य नरसिंह भगवान, हाँ, या नारायण कोई लीला करते हैं? कोई लीला नहीं करते, राइट? तो जो मधुरता है वो उनमें है सिर्फ, इसलिए ये चार गुण है जो कि भगवान श्री कृष्ण में उनके अवतारों में नहीं है. और यस देखो, मटेरियल लाइफ में जो है सेटल होने की बात कहीं मैं सोचना है, मटेरियल लाइफ इज मेंट टू अनसेटल, ठीक है, लेकिन उस अनसेटल चीज को हैंडल कैसे करना है वो हम भक्ति में सीखते हैं. संसार की जो रोड है ना वो टेढ़ी मेढ़ी ही है, तो इसमें आप रिक्शे जाओगे तो ढक 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 ठोकरे लगेंगी. बेटर है भक्ति की मर्सिडीज बेंस में जाओ. मर्सिडीज बेंस के ना शॉक एब्जॉर्बर इतने फर्स्ट क्लास होते हैं कि गड्ढेदार सड़क पर पता नहीं लगता. तो इसलिए जो है भक्ति की मर्सिडीज बेंस में जाना चाहिए. तो सेटल कैसे होंगे? कृष्ण भावना भावित होकर. तो मैंने कहा ना, जैसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं ये छोटी लगेंगी, क्यों? क्योंकि आपकी चेतना बहुत ऊंची हो गई है ना. तो कृष्ण भक्ति के द्वारा हमारे क्या है, हमारी चेतना ऊंची होती है, तो ये चीजें बहुत छोटी दिखती हैं ऐसे. हाँ जैसे कोई, जैसे किसी की इंक्रीमेंट बड़ी कम लगी, मेरी सिर्फ 1,000 रुपये इंक्रीमेंट लगी, क्या पर डिवोटी जो ठाकुर जी की इच्छा संतुष्ट है, उसके लिए चीजें बहुत छोटी हैं, इसलिए चेतना बहुत ऊंची है उसकी, क्योंकि इसीलिए. तो चेतना ऊंची करने का जो तरीका वो यही है कि कृष्ण भक्ति, ठीक है. और हाँ, कौन सी किताब में पढ़ा आपने? बीआर चोपड़ा संहिता या रामानंद सागर संहिता? हाँ कौन है भैया, कहाँ छुप के बोल रहे हो? हाँ हाँ ऑफकोर्स, जो हमने बी आर चोपड़ा जी का महाभारत देखा है या फिर कोई हमने और टीवी सीरियल देखे हैं तो उनमें ऐसे दिखाया जाता है ऑफकोर्स, लेकिन वास्तव में परम भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है. ये बात हमें समझनी है, क्योंकि वो शास्त्रों का मत है। जैसे कोई कंपनी का मैनेजर है, एचआर मैनेजर, जानते हैं एचआर होता है कंपनी में, एचआर होता है, तो वो रिक्रूट करता है एम्प्लॉयज को। तो एक दिन क्या होता है, एचआर मैनेजर जो है वो कंपनी के मालिक के साथ कंपनी में प्रवेश करता है, तो कंपनी में सोचते हैं ओ इसको भी एचआर मैनेजर ने हायर किया है, पर कंपनी के मालिक को एचआर मैनेजर हायर नहीं करता, वो सिर्फ उनके साथ आया है। तो बाकी सारे अवतार विष्णु से आते हैं, तो विष्णु से जो है भगवान आते हैं, लेकिन वास्तव में विष्णु के थ्रू आ रहे हैं, इट इज नॉट ए विष्णु उनकी उत्पत्ति का स्थान है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से अपने एचआर मैनेजर यानी कि अगर विष्णु के साथ कंपनी का मालिक यानी भगवान श्री कृष्ण अगर आ रहे हैं, तो जनमानस को लगता है अरे इस कंपनी में जितने एम्प्लॉय कैसे आए, एचआर ये एचआर मैनेजर से आए, तो कंपनी का मालिक है ना, इसको भी एचआर मैनेजर ने ही हायर किया होगा। पर एचआर मैनेजर क्या मालिक को हायर कर सकता है? मालिक हायर करता है एचआर मैनेजर को कि तुम ना मेरी ये रिक्रूटमेंट करना, कंपनी में भर्ती करना। पर भगवान श्री कृष्ण है, इस तरह से हमें समझना है, और शास्त्रों का मत है। हाँ, विष्णु और कृष्ण डिफरेंट है कि एक है? वेल, वो डिफरेंट भी है और एक भी है। वो एक इस तरह से है क्योंकि वो तत्व में एक है यानी भगवत तत्व, लेकिन डिफरेंस क्या है? रस में, जो भक्ति का जो रस है उसका आदान प्रदान जो है वो आप विष्णु के साथ इतना नहीं कर सकते जितना भगवान श्री कृष्ण के साथ कर सकते हो। जैसे नरसिंह भगवान के साथ के पास अगर कोई तपस्वी जाए कि मैं चाहता हूं कि मैं आपकी विवाहित दासी बन सकूं, तो नरसिंह भगवान कहेंगे मेरे साथ सिर्फ लक्ष्मी रहती है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास अगर कोई जाए कि भगवान मैं आपकी जो है पत्नी रूप में, आपकी दासी रूप में सेवा करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, माने यस ऑफ कोर्स वेलकम। ये कृष्ण जो है सबकी इच्छा पूरी करने वाले, क्योंकि रसों या भक्ति के रस में पूरा आदान प्रदान परम भगवान श्री कृष्ण का ही है। विष्णु जो है आपको, विष्णु भी भगवान से ही आए हैं क्योंकि, इसलिए वो भगवत तत्व ही है, इसलिए विष्णु कृष्ण एक ही बात है, लेकिन अलग भी है क्योंकि कृष्ण जो है वो विष्णु के उत्पत्ति स्थान है। जैसे कि एक मोमबत्ती से मैं दूसरी मोमबत्ती जलाऊं, दोनों मोमबत्तियों को फर्क है? नहीं, लेकिन एक ओरिजिनल कैंडल है, दूसरी लेटर कैंडल है, सेकंड कैंडल है ना, लेकिन एक ओरिजिनल कैंडल, लेकिन दोनों कैंडल है। तो एक मोमबत्ती से मैंने दूसरी मोमबत्ती जलाई है, तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण से उनके अवतार रहे हैं, दोनों विष्णु तत्व, कृष्ण तत्व, विष्णु तत्व है दोनों, लेकिन फिर भी भेद है क्योंकि एक ओरिजिनल है और एक इनकार्नेशन है, लाइक दैट। और हाँ हाँ, तो थैंक यू। हाँ यस, भगवान सारे सृष्टि के उद्गम है, ट्रू। हाँ हाँ यस, थैंक यू। हाँ क्या अब जो कहते हैं कहने दो, हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य में लगे हुए हैं बस, हमको इससे और कुछ लेने देना नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसी बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए मनुष्य योनी, ठीक है। आई थिंक टाइम काफी हो गया। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। अनाउंसमेंट्स, बैठे रहिए।
हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने समय पे आके इस क्लास को कामयाब किया। और सबसे पहले यह हम लोग हिज ग्रेस अमरोक लीला प्रभु का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से, जो कहते हैं ना आम जन की भाषा, उसमें समझाया और बड़े अच्छे से हमें बताया कि किस तरह भगवान सर्वोपरि हैं और कैसे हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो हम लोग तीन बार प्रभु जी का हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे, जैसे कि हमारी वैष्णव परंपरा है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो प्रसादम सेवा करते हैं भक्त, वो कृपया चले जाएं प्रसादम में, ताकि जो भक्त यहाँ बैठे होंगे उनको प्रसादम समय पे और अच्छे तरीके से सर्व किया जाए। आज हमारे बीच में वृंदा है और वृंदा का बर्थडे है, तो हम लोग चाहेंगे अमोघ प्रभु से कि वो वृंदा को गार्लैंड और भगवान की पिक्चर देके उनका आशीर्वाद दें। तो वृंदा जो है हमारे बीच में अंतर्याम बलराम प्रभु हैं, उनकी बेटी है, तो मैं बुलाना चाहूँगा वृंदा, अंतर्याम बलराम प्रभु और उनकी माता जी गीतांजलि माता जी। तो सब लोग स्वागत कर रहे हैं इनका, और प्रभु जी ने आज का प्रसादम स्पॉन्सर किया है, और जो आज आप प्रसाद पाएंगे वो इन्हीं का स्पॉन्सर किया हुआ है। मेहनत जरूर भक्तों ने की है, लेकिन साइन का लगा है। हरे कृष्ण। सब लोग ताली बजाइए प्लीज, कंजूसी नहीं ताली में। वृंदा ने अभी 2 साल कंप्लीट किए हैं, आज पूरे 2 साल की हो गई वृंदा, और बहुत अच्छी बात है कि किसी भक्त के घर में आई है तो अब जरूर बड़ी भक्त बनेगी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद मुझी। और 12 मई यानी कि थर्सडे को श्रीमती सीता देवी जी का फिरिस्ट डे है, मंदिर में सुबह 10:30 बजे से प्रोग्राम होगा, तो आप लोग आइए, और 12 बजे के बाद प्रसादम रहेगा। 14 मई को एकादशी है, प्लीज़ सब लोग एकादशी करें। एकादशी करने से क्या होता है, हमें भगवान की भक्ति अति शीघ्र प्राप्त होती है, हमें करना चाहिए, उस दिन अन्न प्रसाद नहीं लेना चाहिए। और नेक्स्ट डे 15 मई को ब्रेकफास्ट टाइम है, वह है 6:04 से लेकर के 10:24 तक। लास्ट टाइम लगता है कुछ भक्तों ने एकादशी किया होगा, तो सार्वभौम प्रभु आए थे, उन्होंने बताया था सिर्फ 8 मिनट के अंदर प्रसाद खोलना था वो फास्ट, और रात को ही प्रसाद रख के सोना था, लेकिन इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से 6 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम मिलेगा, प्रसाद ले सकते हैं। और नेक्स्ट मंडे कोई क्लास नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट मंडे कोई क्लास नहीं है, तो कृपया भक्त नेक्स्ट मंडे ना आए, क्योंकि ट्यूजडे को नरसिंह चतुर्थी है, और नरसिंह भगवान का फिरिस्ट डे है, उस दिन पूरा दिन फास्टिंग रहेगी, कंप्लीट डे फास्टिंग रहेगी, और शाम को 6:30 बजे मंदिर में नरसिंह भगवान का अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद मंदिर में प्रसाद रहेगा, और उस दिन जो भी भक्त प्रसाद लें एकादशी प्रसाद ही पाए। सॉरी 16 मई मंडे। और हम जब भी आप अटेंडेंस पे आते हैं हम आपको प्रसादम कूपन देते हैं, तो प्लीज वो प्रसादम कूपन आप प्रसादम हॉल में जरूर दिखाएं, ताकि हम आपको अच्छे तरीके से प्रसाद सर्व कर पाएं। और कोई भी भक्तों से निवेदन है कि वो वॉलंटियर से बहसबाजी करने से बचें, अगर आपके पास कूपन नहीं है आप पीछे खड़े हो जाइए, फिर हम मुझसे मिल सकते हैं, प्रभु से मिल सकते हैं, प्रसादम कूपन अगर देखा, अगर हमारे पास अरेंजमेंट रहेगा प्रसादम का, हम आपको जरूर प्रसादम कूपन देंगे, बट बीच में लाइन में ना लगें जिनके पास प्रसादम कूपन नहीं होता है, क्यों हमें हर बार मैनेज करना पड़ता है, हम लोग एक आइडिया से प्रसाद बनाते हैं, ऐसा नहीं तो हम फालतू प्रसाद बनाए वेस्ट जाए, क्योंकि भगवान में भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं होता, तो जितने कूपन हम लोग आपको बांटते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रसाद तैयार करवाते हैं, कि हमें 200 लोगों का प्रसाद चाहिए या 250 लोगों का प्रसाद चाहिए, तो जिनका कूपन नहीं है कृपया वो लाइन में ना लगे, और कूपन के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं बाद में जिनका कूपन नहीं है। और अभी बीच में हमारे गीतांजलि माता जी कुछ समर कैंप के बारे में बताएंगी, तो प्लीज अपने बच्चों का एनरोलमेंट कराएं, और के बारे में समर कैंप के बारे में पूरा पूछ सकते हैं, बता सकते हैं आपको। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। जैसा कि हम सब जानते हैं बच्चों की बहुत जल्दी छुट्टियां शुरू होने वाली है, और पिछले साल भी टेंपल ने बहुत अच्छा समर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, इस साल हम फिर से वो वर्कशॉप दोबारा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, 23 मई से लेकर 30 मई तक ये वर्कशॉप रहेगी, जिसमें आपके बच्चे आर्ट एंड पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रामेटिक्स, सिंगिंग, म्यूज़िक और डांस के साथ साथ बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, एजुकेशनल ट्रिप भी हम टेंपल का कराते हैं, उसमें बहुत सारी और एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पिरिचुअल वीडियोस दिखाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम कराते हैं जो कि नॉर्मल समर कैंप्स में बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो जो भी भक्त एनरोल कराना चाहते हैं अपने बच्चे को, बहुत ही एक नॉमिनल फीस है उसके लिए, और आप बाहर स्टॉल पे श्रुति प्रिया माता जी हैं, प्रेम प्रिया माता जी हैं और चंदा माता जी हैं, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये पैम्फलेट ले सकते हैं, इस पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं जिन पे आप अगर अभी नहीं तो बाद में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको थोड़ा सोच विचार के, और अपने बच्चों को ज़रूर इसमें इनरोल कराएं। तो ये 23 मई से 30 मई तक का है और आपको रजिस्ट्रेशन 15 मई तक करा लेनी चाहिए। तो जितने भी भक्तियाँ उपस्थित हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बाहर जाते वक्त आप स्टॉल पे माता जी से मिल सकते हैं और उनसे ये पैम्फलेट ले सकते हैं, इस पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, तो फिर आप बाद में उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अभी भी रजिस्ट्रेशन आप कराना चाहें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। हरे कृष्णा।
थैंक यू माता जी। तो अब हम लोग सब प्रसाद के लिए प्रस्थान करते हैं। हरे कृष्णा।